Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Roz ki tarah hum aaj bhi desh videsh ki aarthik gatividhiyon aur share bazaar par nazar dalenge aur खास खास खबरों पर चर्चा भी करेंगे. प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम विशाल.
धन्यवाद अमरीश जी. थैंक यू राजेश जी.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस रिट्रीट फ्रॉम डेज हाई एंड एंड विद मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स एडवांसेस ओवर 150 पॉइंट्स. Nifty closes above 25,000. Major Asian markets hedge higher amid hopes of de-escalation in West Asia. European indices trading with gains. And global crude oil prices hit two-week low. Brent crude slips 4% to trade at around $68.67 per barrel.
घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक आज शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख पाए और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 150 अंकों की बढ़त दिखाई दी. निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद में एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दी. यूरोप के शेयर बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे और कच्चे तेल के मूल्य 2 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे. ब्रेंट क्रूड 4% गिरकर $68.67 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में पश्चिम एशिया के तनाव का असर आज भी जारी रहा और बाजार में उथल पुथल चलती रही. सूचकांक शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख पाए और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 158 अंक यानी 0.2% की तेजी के साथ 82,055 अंकों पर बंद हुआ. हालांकि दिन में यह स्तर 83,018 तक चला गया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी दिन में 25,318 के स्तर तक चला गया, लेकिन अंत में 72 अंक यानी 0.3% की बढ़त के साथ 25,044 अंकों पर बंद हुआ.
The benchmark domestic equity indices retreated from the day's high and ended with modest gains in a volatile trade today as uncertainties in West Asia conflicts kept investors on edge. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, advanced 158 points, almost 0.2%, to close at 82,055 after hitting an intraday high of 83,018. The National Stock Exchange, Nifty 50, added 72 points, almost 0.3%, to settle at 25,044 after hitting an intraday of 25,318.
सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों में बढ़त दिखाई दी. सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज करने वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.6%, टाटा स्टील का शेयर 1.5% से अधिक और कोटक बैंक का शेयर 1.4% से अधिक बढ़ा. गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में पावर ग्रिड का शेयर 1.5% से अधिक, ट्रेंट का शेयर लगभग 1% और एनटीपीसी का शेयर 0.9% से अधिक गिरा.
इन सेक्टरल इंडेक्सेस ऑफ द बीएससी 16 आउट ऑफ 21 सेक्टर्स एंडेड विद गेन्स. अमंग द टॉप गेनर्स सर्विसेज सर्ज्ड ओवर 2.1%. Telecommunications as well as commodities both gained more than 1.1% each, and metal added almost 1%. In top laggards, energy and oil and gas both lost almost 0.2% each. IT dropped 0.1% and tech as well as focused IT closed nearly flat. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,662 companies advanced, shares of 1,339 companies declined, while shares of 143 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 44 companies hit their 52-week high, while 31 hit their 52-week low.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 78 पैसे की बढ़त के साथ 85.97 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कच्चे तेल के मूल्यों में कमी और घरेलू शेयर बाजारों के अच्छे प्रदर्शन के चलते ऐसा हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98 पर कारोबार कर रहा था। विशाल जी, जैसा शेयर बाजार का हमने हाल देखा, पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार ये था कि जितने जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, खासतौर से इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह का तनाव और युद्ध जैसी हालात थे, वो कम होने के बाद और सीज फायर के ऐलान करने के बाद हमें बाजार में एक अच्छी बढ़त दिखाई दी, हालांकि दिन में उथल पुथल चलती रही। आप कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाजार की इस आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए अमरीश जी, सबसे बड़ा फैक्टर तो जो आपने जिसका जिक्र किया वही है, क्योंकि बड़ा ही इवेंटफुल डे रहा भारतीय बाजारों के लिए, और इस तरह के शार्प स्विंग जो आज बाजार में देखने को मिले, कभी उतार कभी चढ़ाव और अंत में थोड़े से गेन के साथ बाजार बंद हुआ, तो इस तरह के जब शार्प स्विंग देखने को मिलते हैं तो उसके पीछे कोई एक ठोस बड़ा कारण होता है जिसको जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं, वो लगातार उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। और यहाँ इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था वो एक बड़ा फैक्टर था। सुबह जब बाजार खुले तो उसमें सीज फायर की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की गई, और दोपहर आते आते सीज फायर वायलेशन की बात भी हुई। तो क्योंकि ये जिस इलाके में ये युद्ध हो रहा है, पश्चिम एशिया जिसको हम कहते हैं, तेल की जो आपूर्ति है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो ये एक कनेक्टेड नेटवर्क है। अगर कच्चे तेल की कीमतों पे कोई नेगेटिव असर पड़ता दिखेगा तो उसका सीधा असर जो है स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा, और खासतौर पर जब इतनी तेजी से घटनाक्रम हो रहा हो तो इतने शार्प रिवर्सल्स और शार्प एडवांसेस जो है मार्केट में देखना आम बात है।
सो विशाल, हाउ शुड इंडियन इन्वेस्टर्स बैलेंस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क गिवन टुडेज इंट्राडे स्विंग ऑफ ओवर 1000 पॉइंट्स इन द सेंसेक्स?
Well, you know, sort of a two-point strategy can be applied here, Rajesh ji. One is, of course, an ultra-cautious approach, because these are events which cannot be predicted. For example, when you look at the economic data, when we talk about, you know, tax cuts by central banks, or when we're talking about inflation or growth figures and all that, there is still a degree of, I would call it speculation there as well. But there is still a degree of speculation which you can have with the numbers, with the data in your hand, that perhaps, you know, the growth will be positive or negative. The rate cuts might happen, might not happen. But in geopolitical situations, and specifically in wartime situations, in conflict situations, it's entirely impossible to go ahead and predict the situation one way or the other. Hence, renewed focus from my side on very, very ultra cautious approach if you're talking about short term. And in fact, the sectoral trends should be the guiding light here for the investors in the short term market, if they want to play the short term hand. As far as midterm and a long range aspect is concerned, of course, there are positions which are sometimes taken by investors or traders in futures and commodities markets, which might not turn out to be true. For example, today's slump in the crude oil prices and the futures as well might not be very positive for some of the investors who might have thought the situation would be otherwise maybe around 2 days ago. So of course, that's the nature of the game. But again, it all boils down to Rajeshji to two factors. One is having a cautious approach. Don't just look at the numbers in the stock market. Also look at the news which is coming in from several theaters, the factors which are impacting the market for the past at least almost 7 to 10 days or 15 days, because that trend seems to continue for a slightly longer period, and then take a call based on the sectoral trends as well.
So you mentioned the crude prices today, with oil prices plunging nearly 4% on ceasefire news, but remaining volatile. What strategies should energy-sensitive sectors like auto or aviation employ to hedge against sudden crude spikes?
Well, when we look at the crude oil prices, and I'll take you back to around 7 to 8 days, there's this 4% slump which we're talking about. And I think we've settled somewhere around $69
per barrel. Roughly, yes.
Roughly, yes. Mm. So if you go back a week, we'll find out that this was almost the same price around a week back. So these surges will keep on happening. As far as these sectors, which you mentioned, energy sensitive sectors are concerned, their long term outlook should not be based on short term spikes in crude oil prices, something or other factors. They will have to have a midterm strategy and a long term strategy as well, which should be formulated in such a way that these short term swings on either side, positive or negative, should not impact their growth scenario in midterm or long term, because these price surges in crude oil may likely to continue. Okay. because the
given the sensitivity ceasefire, around
exactly it. In the area, and the ceasefire is also still fragile, so perhaps this might still go up or may come down, but the larger strategy, the long term strategy, should be such that these small term events, maybe in a week's window or in a fortnight's window, should not have a negative impact on the growth outcome of these energy sensitive sectors.
Vishal ji, main aapka dhyan dilana chahunga jo PSU bankon ke aur bankon ke jo shares hain, वो उन्होंने काफी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इतने सारे उथल पुथल के बीच. तो आपको क्या लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये निवेशकों के लिए बहुत ही आकर्षक हैं, और इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी अनिश्चितता के बीच भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ संभावनाएं नजर आती हैं इसमें?
जी बिल्कुल, संभावनाएं नजर आती हैं. और मुझे याद है कि लगभग महीना भर पहले इसी कार्यक्रम पर हम बैंकिंग सेक्टर की जो आउटलुक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और उसमें मैंने कहा था कि मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसमें जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल हेल्थ हो, रेगुलेटरी सिस्टम्स जो हैं हमारे, उनमें जिस तरह के रिफॉर्म्स मैं कहूंगा कि वो लाए गए हैं, उसका असर धीरे धीरे परकोलेट होता है. और वो खासतौर पे जब ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन होती है तो जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सेफ हेवन ढूंढते हैं. तो मुझे लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर की पिछले कुछ हफ्तों में भी नहीं, मैं महीनों में कहूंगा, रही है, सस्टेन रही है. बीच में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन एक सस्टेन ग्रोथ जिसे माना जाए वो रही है. उसके तर्ज पर अगर देखा जाए तो शायद ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को बेहतर लगा होगा कि यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहां पर लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में अच्छे गेन्स मिल सकते हैं. और जो बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ है और PSU बैंक्स खासतौर पे, उनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बड़ा पॉजिटिव आउटलुक देते हैं.
लेकिन इसके साथ ही अगर हम फार्मा सेक्टर्स को देखें, फार्मा में काफी आज गिरावट देखने को मिली, तो आप निवेश की दृष्टि से आपको फार्मा कैसा दिखाई देता है? क्या ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि ऐसे समय में निवेशक फार्मा की ओर जाएं, क्योंकि वहां अधिक संभावनाएं दिखती हैं आगे?
बिल्कुल, संभावनाएं हैं फार्मा सेक्टर में अमरीश जी, क्योंकि उसकी भी एक सस्टेन ग्रोथ रैली रही है. एक एक का एक नीजक रिएक्शन उस सेक्टर में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला. और जहां तक आज की गिरावट की बात करें, तो क्योंकि जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी स्ट्रेस होता है, और फार्मा सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत डिपेंडेंट है. खासतौर पे अगर हम भारत के फार्मा सेक्टर की बात करें, चाहे हम निर्यात करते हों या हम आयात करते हों, तो इस तरह की जब सेंसिटिव एरियाज में पश्चिमी एशिया का क्षेत्र हो या फिर जो है रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसका सीधा असर, खासतौर पे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है उसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर देखने को मिलता है. तो एक मैं कहूंगा कि एक एक छोटा सा ब्लिप देखने को मिला है हमें रडार पे, लेकिन फार्मा सेक्टर को लेके मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव रहूंगा और बुलिश रहूंगा.
जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल दिखाई दिया और प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 3%, हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 2% से अधिक, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और जापान के निकेई इंडेक्स दोनों में ही 1.1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़त दिखाई दी. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार भी दिन के कारोबार में बढ़त की ओर दिखाई दे रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 1.7% से अधिक, फ्रांस के कैक में 1.1% से अधिक और लंदन के फुटसी में लगभग 0.3% की बढ़त चल रही थी. विशाल जी क्या कहेंगे, एशिया से लेके यूरोप तक सब जगह जो ईरान इजराइल के जो फाइनली सीज फायर की का ही सीधा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है.
जी बिल्कुल, और खासतौर पे यूरोपीय बाजारों पे और जिन एशियाई बाजारों के आपने जिक्र किया वहां तो और भी ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जिसकी मैं बात कर रहा था उसका, उसमें कोई भी अगर हरकत होती है, कोई नेगेटिव बात आती है, तो उसका सीधा असर इन एशियाई देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर, और खासतौर पर यूरोपीय देशों की ना केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि उनकी जो जिसे कहा जाए कि ग्लोबल मल्टीलेटरल फोरम्स पे जो उनकी डिप्लोमेटिक हेजमनी है उस पर भी असर दिखता पड़ता है. तो इसलिए वो सीधा कनेक्शन है, और वहां अगर थोड़ी सी राहत मिली तो आपको इन शेयर बाजारों में भी राहत मिली.
US stocks closed higher on Monday as markets shrugged off the effects of the escalating West Asia conflict. The S&P 500 and Nasdaq composite rose over 0.9% each, and Dow Jones Industrial Average climbed almost 0.9%. Earlier, Federal Reserve Vice Chair for Supervision, Michelle Bowman, said she would favor an interest rate cut at the next policy meeting in July, so long as inflation pressures stay muted. In remarks for a speech in Prague, Bauman became the second central banker in recent days to suggest that President Donald Trump's tariffs are likely to have a temporary and muted impact on prices, paving the way for lower rates. Previously, Federal Reserve Governor Christopher Waller spoke along the same lines last week, indicating that he did not anticipate tariffs would have a significant impact on inflation. Now, Vishal, this is very interesting that two known personalities are saying that tariffs are not going to have any impact, whereas reports that have just come in says that despite President Donald Trump's criticism, Fed chair says they will continue with not having the great cuts in the near future.
Well, the expectations in the U.S. Economy and the U.S. markets are, of course, for a rate cut. But these statements coming in, and if you look at the macroeconomic data of the United States of America as well in the past 2 to 3 months, the kind of picture it gives us is that the impact of the Trump tariffs is seemingly, waning down. It's fading away slowly. It's not quick, but it's slow. The reason behind that is that, President Trump has started, striking deals with independent countries. For example, they had a 90-day truce with China. With India, they're already engaged in a conversation on trying to resolve the Trump the tariff issue. Then there are several other countries as well. So the major economies or the major factors which could have had a negative impact on the US economy because of the Trump tariffs, seemingly those are the issues which are either on the brink of getting resolved or in the process of dialogue as well. So thereby, in the long run, when these two gentlemen from Fed Reserve, the well-renowned voices as well, when they say that, yes, this is not likely to have an impact, they're right. But as far as Fed Reserve and tax rates are concerned, it looks like the Fed Reserve might want to wait a little longer to wait for the inflation data also to settle down a little more, and for the U.S. economy to perhaps pick up the pace, because that pace got strangled in the past 3-4 months. So they would want that to happen.
जी और चलते हैं एक और अच्छी खबर की ओर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है. इससे ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही. इस आलेख में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय सफलता की पुष्टि की गई है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी खबर है और हम सभी ये जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में कितनी तेजी से पूरा जो स्वरूप है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का वो बदला है. बहुत अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं और जिसकी वजह से लोगों को इस उद्यम में आना आसान हो गया है. चूंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत आसानी से, और खासतौर से चूंकि कृषि आधारित है तो उससे कहीं ना कहीं कृषि को भी बढ़ावा मिला है. आप इसको किस तरह से देखते हैं?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा. क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है उसको कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है. जब हम बात करते हैं, जब सरकार बात करती है, और पिछले 10 सालों से जो कहा जा रहा है कि भाई किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है, तो किसानों की आय में जब बढ़ोतरी करनी है तो केवल फसल जो किसान उगाता है उस फसल को बेचने से केवल आय में वो बढ़ोतरी नहीं होगी जिसकी चाहत सरकार को है या किसानों को भी है. तो जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ ना केवल उचित दाम मिल सकता है बल्कि किसान स्वयं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं, और उसके लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स हैं, अलग अलग योजनाएं हैं. और जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि इसका भरपूर फायदा लाभार्थियों ने उठाया है, जिसमें चाहे किसान हो चाहे उद्यमी हो. और जब किसान उद्यमिता की तरफ चलता है तो उससे फायदा न केवल किसान को होता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी होता है, और आंकड़े वो दर्शा ही रहे हैं.
जी निश्चित रूप से.
मूविंग ऑन, द गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट अ क्रॉप वाइज कैंपेन फ्रॉम थर्सडे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the crop-wise campaign will start with soybean from Indore, Madhya Pradesh. He said during the campaign, farmers, scientists and stakeholders will sit together and discuss ways to increase the production of soybean. Mr. Chauhan added that after soybean, the meeting will be held to discuss ways to increase the production of cotton, sugarcane and oilseed crops. Vishal, how do you see this strategy to have crop-wise campaigns as we go along? What is your take on this?
This is the perfect time, I would believe, to go ahead and have a very focused approach, because just having a sort of an umbrella approach that, let's increase the food grain production in the country is something which will, sort of move all levers in the machinery in all directions. But having a focused approach, taking it crop
and
by
keeping
crop.
Keeping farmers, scientists and stakeholders together.
Yes. So when you move, crop by crop, and when you keep all stakeholders together, then you have a definitive strategy for each crop, each region as well, because there are different demands for each crop in terms of the soil situation, the water situation, and also how much of a push is required, how much do we want to increase the production in a particular crop segment. So that is why this sort of sectoral approach, I would say, in crops is really important.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government has taken several measures to reduce the burden on trade by cutting down tariffs to support manufacturing and promote export. Addressing the Exim Bank Trade Conclave 2025 in New Delhi today, Ms. Sitharaman said countries' total exports reached an all-time high of $825 billion and achieved 6% growth over the previous year. The minister said the global exports grew only by 4% and India's exports witnessed growth of 6.3% in the last fiscal year. On the talks with various nations to finalize free trade agreement, Ms. Sitharaman said these agreements will change the dynamics of countries' export in the future. Very briefly, Vishal, the free trade agreements that the minister is talking about, what could be on the anvil? And this figure of 6.3% is extremely encouraging.
It is. When we juxtapose it with the global data and given the overall global economic situation as well in the past 6 months or so, it gives us a clear picture that we are on the right path. And that also shows that our manufacturing sector is doing much better than what it is, what the situation is in other manufacturing hubs across the globe. When we look at our neighbors, China as well, Vietnam also. So looks like we are in a much better position with the global numbers as well. And largely speaking, if we have a very strategic growth and very increased number on the export part, that also shows the resilience of our economic fundamentals in the face of the global situations.
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर. सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री गाड़ियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना के अंतर्गत वैश्विक कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है. यह पोर्टल इस वर्ष 21 अक्टूबर तक आवेदकों के लिए खुला रहेगा. इसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा कि इससे देश में स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के वाहनों के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. आप विशाल जी क्या कहेंगे, पोर्टल खोलने का मतलब है कि बाहर की भी बहुत सारी कंपनी आएंगी, तो किस तरह का सिनेरियो आपको दिखता है?
जी बिल्कुल, देखिए बाहर से कंपनी आएंगी, निवेश करेंगी, तो हमारे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. और सबसे बड़ी बात जो देसी कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, उनको एक पॉजिटिव कंपिटेटिव अप्रोच उनकी रहेगी. नई टेक्नोलॉजी बाहर की कंपनियां अगर लेकर आती हैं तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी देश में भी विकसित हो, ये भी एक कंपिटेटिव अप्रोच रहेगी. और कंज्यूमर्स के लिहाज से तो फायदा ही फायदा है, उनके पास और ऑप्शन होंगे.
जी, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सटेंडेड लॉसेस टू हिट अ 2-week low today amid lower risk of supply disruptions in West Asia, though U.S. President Donald Trump accused both Israel and Iran of violating a ceasefire which he had proposed. Brent crude was trading around 4% down at $68.67 per barrel, while WTI crude was also trading around 4% down at $65.82 per barrel when reports last came in. Earlier, oil prices recorded their sharpest single-day decline in 5 years following Iran's attack on the Al Udeid U.S. airbase in Qatar. In the bullion market today, 24-carat gold was trading over 2.3% down at 97,240 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading over 1.7% down at 1,05,430 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 2.4% गिरकर 96,981 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.72% गिरकर 104,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू विशाल फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, Benchmark domestic equity indices retreat from day's high and end with modest gains. Sensex advances over 150 points. Nifty closes above 25,000. Major Asian markets edge higher amid hopes of de-escalation in West Asia. And global crude oil prices hit two-week low. Brent crude slips 4% to trade at $68.67 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.